चलते कैसे थे, इसको भी देख लेते हैं और हम सब अपनी रफ्तार भी देखेंगे, अपना चलना भी देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ रफ्तार थे, बाज़ार में चलने वाले शख्स की रफ़्तार से चलते थे, यानी दरमियानी चाल थी। दरमांदा और सुस्त ना थे, कोई आपका साथ ना पकड़ पाता, यानी इतना तेज़ चलते थे कि दूसरे लोग आपका साथ पा ही नहीं सकते थे, आप उनसे आगे निकल जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी को रसूलुल्लाह से बढ़कर तेज़ रफ़्तार नहीं देखा, गोया ज़मीन आपके लिए लपेट दी जाती थी, यानी यूँ चलते थे, यूँ तेज़ चलते थे। अच्छा, बाद हम जिसको पंजाबी में कहते हैं मटक मटक के चलना, कभी आप हमारी अपनी चाल देखा करें, किसी मेहमान को सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक आए ना तो 10 मिनट लगा देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने का इरादा करते तो चल पड़ते हैं, हम तो अपने आप को थका मारते और आप बेपरवाही से चलते रहते थे, यानी आपको थकन नहीं होती थी, आप लंबा भी चल लेते थे, साथी जो साथ होते थे वो थक जाते थे लेकिन आप चलते रहते थे। जब आप कदम रखते तो पूरा कदम रखते। अब ये देखिए सहाबा ने ये नोट किया हुआ है, ये बहुत अहम नुक्ता है, कदम रखते तो पूरा कदम रखते, यूँ यानी चलते तो यूँ चलते, और हम बाज़ दफ़ा आगे उंगलियों के बल चल रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा एड़ियों के बल चल रहे होते हैं। आप लोगों के जूते देखें, आपको जूतों से पता चल जाएगा, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में चपली जूती पहनते हैं लोग, जो हवाई जूतियाँ नहीं होती रबड़ की, तो बाज़ लोगों की आप देखें ना तो एक तरफ से दब चुकी होती है, बाज़ लोगों का अंगूठे का निशान दब चुका होता है, तो आपका पाँव बिल्कुल पूरा सीधा था। और किसी इंसान के चलने के अंदाज़ से उसकी पर्सनैलिटी खुलती है। बाज़ दफ़ा लोग यूँ चलते हैं, अगर आप मेरा हाथ देखें ना तो बच्चे ना वो यूँ चलते हैं, यूँ हाथ पाँव इधर रखा तो फिर चंद इंच आगे चला गया, बहुत गलत बात है। हमारे वालिद इतना टोकते थे, कहते थे ये बंदा कभी ज़िंदगी में एक जगह सेट नहीं होगा, यूँ चलना, यूँ जमा कर, जहाँ पाँव रखे ना वहीं रहे, एक तो स्लिप नहीं होगा, दूसरा आपके अंदर एक जमाव आएगा। और अगर आज नोट कीजिएगा कि कहीं आप यहाँ, मैं सुबह रोज़ आती हूँ, आप कहेंगे पता नहीं हमारा क्या क्या नोट करती हैं, जब जूते पड़े होते हैं ना तो बहुत सारों के तो सीधे ही होते हैं और कुछ का यूँ रखा होता है, किसी का एक के ऊपर दूसरा चढ़ा टेढ़ा, तो मुझे जिसका मुमकिन हो सके मैं उसको सीधा भी कर देती हूँ, तो मैं फ़ौरन सोच लेती हूँ कि ये सिस्टर, इनको एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने जूता कैसे रखा है, और ये जल्दी में आई हैं टेढ़ा जूता रख के आगे चली गई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर असर करती हैं। तलवे में गहराई ना थी, ये जो पाँव के अंदर हमारी छत होती है ना, ये आपकी मोस्टली सीधी थी। आपको पता है कि किसकी सीधी होती है मोस्टली? बच्चों की। बच्चों का आप देखें, छोटे बच्चे के पाँव के नीचे हाथ रखे तो ऐसे रुई के गुदले गुदले से गोले होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी ये चीज़ ऊंची होती है, और इसका पूरा हमारे ब्रेन से ताल्लुक़ होता है। और अगर बिल्कुल सीधी रहे बड़े होके भी तो बंदा सही चल नहीं सकता, जो लोग नहीं चल पाते आप देखें तो उनके नीचे ये कर्व्स नहीं होते, लेकिन अल्लाह के नबी का ये कर्व बहुत थोड़ा था, यानी बिल्कुल स्ट्रेट था। जब मुड़ते तो पूरे मुड़ते, सामने होते तो मुकम्मल और पीछे मुड़ते तो मुकम्मल, चलते तो झटके से उठते और यूं चलते गोया ढहलवान से उतर रहे हैं, फिर झटके से पाँव उठाते और नरमी से चलते। मतलब आप देखिए कि अगर आप चल रहे हैं और कोई आपसे के बात करो तो आप इधर करके के बात करो नहीं, आप पूरे का पूरा मुड़ के बात करते, तो ये अगले को एक अच्छी फीलिंग देती है चीज़। फिर इसी तरह आपकी आवाज़ और गुफ्तगू कैसी थी, इसको ज़रूर समझना है हमने, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपने आवाज़ के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कह लीजिए, या आपके बात करने का अंदाज़ कैसा था, आप क्या सोचते हैं बल्कि कैसा होगा, थोड़ा सा आप शेयर करें जी। फरहत आप क्या सोचती? आप देखिए कि हर जिसको अल्लाह वो कहते हैं ना चुन ले, उसको हर रंग में चुन लेता है, और कुछ चीज़ें कम भी हों तो अल्लाह ताला फिर वो दे देते हैं। और नबी तो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से थे ना, तो आइए देखते हैं कैसी थी आवाज़। आपकी आवाज़ में हल्का सा भारीपन था, और मर्दों की आवाज़ में भारीपन अच्छा लगता है, और आप शीरिंग गुफ्तार और बावक्कार थे, खामोश रहते तो बावक्कार और गुफ्तगू करते तो पुरकशिश, बोल ऐसे कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, बात शुरू करते तो इसका पूरा अहाता करके ख़त्म फरमाते, ये नहीं कि एक बात शुरू की इधर की फिर बीच में दूसरी शुरू कर दी फिर उधर ले गए, बल्कि पूरी बात करते। गुफ्तगू दो टोक होती, टू द पॉइंट होती जिसको आप कहें, ना मुख्तसर ना फजूल, हर हरफ वाज़े होता। आप फसीह बलीग और रवां तबीयत है, फसीह क्या फसाहत, यानी बहुत एलोगेंट तो एक होता है लेकिन एक, यानी आप बहुत फ्लुएंट थे, और रवां तबीयत थी, यानी बहुत बात करते तो सुनने वाला बिल्कुल आपकी बात के साथ साथ चलता था। निखरे हुए कलेमात बोलते, कोई शख्स ख्वाह कितना ही फसीह हो बलीग होता, आपकी हमसरी नहीं कर सकता। आपको हिकमत और दो टोक खिताब के साथ जामे कलेमात अता किए गए थे। तो आप देखिए इससे मैं और आप क्या सीखे। आपको अपने बोलने के अंदाज के बारे में क्या लगता है, आप ठीक बोलती हैं जी? आप अमरीन, आपके बोलने के स्टाइल में आपको कोई नक्स दिखता है? किसी ने नहीं आज तक बताया। अभी भी आप बोल रही ना तो आप साथ हंस भी रही हैं और आपकी बात के गौर से सुननी पड़ रही है।
हल्के बोलती, बहुत से लोग कहते हैं।
देखिए एक होते जज्बात की गर्मी, लेकिन बाज दफा कुछ लोग साथ हंस रहे होते हैं, साथ बोल रहे होते हैं, बात शर्मा रहे होते हैं, लजा रहे। बात ऐसे करें सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको दूसरा समझ सके। बात साथ, वो कहते हैं ना कि बात करते भी हैं तो वो अंदर घुसते ही जाते हैं। जैसे बच्चे बाज दफा बात करें तो माँ को ही समझ आती है, बड़ों को नहीं आती। फरहत, आपका बोलने का अंदाज कैसा है?
मेरा काफी कदम गया है, मेरी वोकल कॉर्ड खराब हो गई थी, तो इस वजह से पहले मेरी आवाज़ काफ़ी धीमी और बारीक थी मेरे ऑपरेशन से पहले, फिर अब उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। लेकिन इधर आके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा बोलने का शौक आ गया है।
बोलने का शोर आ गया। शुरू में आप बोलते थे तो थोड़ा सा आपके अंदर वो मझूलपन दिखता था, जैसे लाइक पंजाबी स्टाइल
जी
उर्दू में
बिल्कुल
दिखता है
बिल्कुल।
जी। जुनैरा, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कभी सोचते हैं आप लोग अपने बोलने के अंदाज पे?
जी
जी,
मैं बहुत लंबा कर देती थी, फिर भी कोशिश करती हूँ शेयरिंग करूँ
बहुत
अपना।
लंबा कर देती थी और आप मुख्तसिर करने को सोचती हैं,
हाँ
और बार बार इंशाल्लाह, बीच में बात की ज़रूरत भी कोई नहीं लेकिन इंशाल्लाह। हाँ जी, आप हुमा
जी मैं बहुत आसान बात करती हूँ।
आहिस्ता बात करती हैं कि जितने ऑडियंस होते हैं उन तक बात नहीं जाती। सही, तो इसको चेंज किया जा सकता है जी। इरम, आप कैसे बोलती हैं?
बी कम
अच्छा जी, ठीक है।
कभी, जिस कल आपने बुलाया था तो एकदम फंस गई, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर अपनी गलती का खुद ही एहसास हो गया था।
अपनी गलती का एहसास हो गया था, ठीक है। तो बहरहाल हम सब में कमी होती है और उसको दूर किया जा सकता है। बच्चों को भी ज़रूर इस पे रखा करें, ज़्यादा ऊंची बोलें तो जवाब ना दें, ज़्यादा आहिस्ता बोलें ऊंची आवाज़ ना दें। देखिए बचपन से ये चीज़ें टोक ली जाए ना तो मैं समझती हूँ कि सारी ज़िंदगी का काम हो जाता है। हमें क्यों नहीं आज तक पता? क्योंकि हमें लोगों ने टोका नहीं है। आपका अखलाक कैसा था, इसकी एक झलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हमेशा बिशाशत होती थी। अब आप ज़रा अपने अपने चेहरे साथ खुद ही रख लें, इसके फ्रेश दिखते थे, बशाशत, फ्रेश, रिलैक्स्ड, सहल खू और नरम पहलू थे। सहल खू क्या था कि आसानियाँ पसंद करते थे और नरमी वाले थे। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा दीनदारों के साथ एक अजीब सा तसव्वुर आता है कि बड़े मुश्किल पसंद होंगे, इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, सांस उखड़ा रहेगा और ये ऐसे होंगे, ये टोकेंगे, ये रोकेंगे। नहीं, हालांकि नबी इजी गोइंग थे, सहल खू कह लीजिए, इजी गोइंग थे। जफाजू और सख्त खू ना थे। जफाजू क्या होते? बेवफा, जफा करने वाला, वफा का ऑपोजिट, और सख्ती नहीं करते थे। बाजारों में ऊंची आवाज़ ना लगाते, सबसे ज़्यादा तबस्सुम फरमाते, स्माइली फेस, गुस्से से सबसे ज़्यादा दूर और रज़ा में सबसे आगे। यानी गुस्सा बहुत कम आता, दूसरों को जब आ चुका होता तो आपको ना आता, और खुश रहने में सबसे आगे, यानी बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। दो कामों में जो ज़्यादा आसान होता इसी को अपनाते। हम क्या कहते हैं, मुश्किल को अपनाओ ताकि ज़्यादा सवाब हो। आप आसान को अपनाते थे, बशर्ते कि वो गुनाह का काम ना हो। अगर गुनाह का काम होता तो फिर इससे सबसे ज़्यादा दूर होते। ये देखिए खूबसूरत अमल है ना। आम जिंदगी में अपने साथ वालों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए कि मुझे तो बस यही करना है, मुझे तो यही चाहिए। अपने घर वालों से पूछें मैं कैसी हूँ, शौहर से पूछें क्या मैं जल्दी खुश हो जाती हूँ, क्या मुझे खुश करना मुश्किल है। हर एक ऐसी बातें अपने इर्द गिर्द वालों से पूछता रहे तो आप देखेंगे कि अपनी इसलाह के लिए इंसान फिर कोशिश करता है। आप सबसे ज़्यादा सखी, सबसे करीम, सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे शाहजोर, अजियत पर सबसे बढ़कर सब्र करने वाले, सबसे ज़्यादा बावक्कार और सबसे बढ़कर हयादार थे। ऐसे नहीं लगता कि वही मुझे शायरी अरबी के याद आ रहे हैं कि ए नबी, आपको तो ऐसे लगता है कि आप कहते गए अल्लाह को और अल्लाह आपको बनाता गया। ये वो चीज़ें जो हम में से हर एक चाहता है कि हमारे अंदर हो, लेकिन हर एक के अंदर नहीं होती, और अल्लाह के नबी के पास ये सब कुछ था। सबसे ज्यादा भड़कर हयादार थे। कोई चीज नापसंद फरमाते तो चेहरे पर इसके आसार देखे जाते। ये भी देखिए लीडर्स की खूबी दिखाई गई कि ये नहीं कि दिल से गुस्से में और ऊपर से कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, नहीं, आपके चेहरे मोरे से दिख जाना चाहिए आपके बच्चों को कि आपकी ये बात ठीक नहीं थी। अपनी नजर किसी के चेहरे पर ना जमाते, पसंदीदगी के साथ किसी का सामना करते। ये भी एक बहुत ही लोगों की बैड हैबिट होती है कि नज़रें यूँ टिक टिकी बांध के लोगों पे जमा देते हैं कि जिससे अगला बंदा बाजा वो कॉन्शियस हो जाता है कि पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया या मेरे चेहरे पे कोई गलत चीज़ है। तो आप चेहरे पे नज़रें नहीं जमाते थे और नापसंदीदगी के साथ किसी को देखते भी नहीं थे, यानी उससे सरफे नज़र करते। सबसे ज़्यादा आदिल, पाक नफ्स और पाक दामन, सच्चाई के अलम बरदार, अलम कहते झंडे को, बरदार मैंने उठाने वाले, यानी सच्चाई के पैकर थे और बड़े अमानतदार थे। नबूवत से पहले ही अमीन के लकब से मारूफ थे। सबसे ज़्यादा मुतवाजे, मुतवाजे क्या है, हम्बल, और तकब्बुर से दूर थे, प्राउड नहीं थे आप। सबसे बढ़कर अहद के पासदार, यानी वादों को पूरा करने वाले, सिला रहम। सबसे अजीम शफकत और रहमत वाले, सबसे उम्दा मुआशरत और अदब वाले, सबसे ज़्यादा कुशादा अखलाक, फोहश और लानत और मलामत से सबसे ज़्यादा दूर, जनाजों में तशरीफ़ ले जाते। ये भी आदत देखिए, क्योंकि मौत याद रहती है तो आखिरत याद आ जाती है। फ़ुकरा और मसाकीन के साथ बैठते, ग़ुलाम की दावत कबूल करते। इन चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए, फ़कीरों के साथ बैठते, ग़ुलामों की, हम में से कोई है जो अपनी मासियों की दावत कबूल कर ले। खाने और लिबास में इन पर बर्तरी न इख्तियार फरमाते, जो आपकी खिदमत करता आप खुद इसकी खिदमत फरमाते। ये भी नोट करने की बात है, ये नहीं कि सिर्फ खिदमत करवाते थे बल्कि करते भी थे। अपने खातिम पर एताब ना करते, एताब कहते हैं डांटने को, गुस्सा करने को, यहाँ तक कि कभी उसे उफ तक ना कहा। गरज साहब के औसाफ को अहाते बयान में लाना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे जमा करते और जो भी बातें हम आपके बारे में सुनते और सोचते हैं वो हमारे अपने अंदर आ जाए। ये सारी बातों को सुनने के दौरान आपके दिल में क्या आया, कोई अपनी तरफ से आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। अगर अल्लाह के नबी ऐसे ना होते तो क्या नुकसान होता, जी आप बताइए, और ऑनलाइन वाले भी शेयर करें। इरम आप बताइए, आप इसको किस तरह से ब्रीफ करेंगी?
मुसलमान हुए और उनका इखलाक ही था जो लोगों को पसंद आया, तो हमेशा जब भी कभी ऐसी कोई बात हो तो हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को आगे रखा और यही कोशिश की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने इतना तंग किया और परेशान किया कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो इसी शख्सियत को आगे रख के तो अपने आप के अंदर कोशिश की कि हम भी उस तरह चल सकें।
इंशाल्लाह जी, आप हुमा सुनते हुए क्या फीलिंग थी, यानी अपने दिल की बात करें, कोई नहीं है तो नहीं है। आमीन सुना आमीन जी। आप उज़्नैर
यही सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हान तआला हम क्या कर रहे हैं और नबी सल्लम की सुन्नत क्या है, अल्लाह सुब्हान तआला हमें सुन्नतों की पाबंदी करने वाला फरमाना।
आमीन सुना आमीन जी। फरहत
जी, उस्ताद जी, मैंने अपने रिश्ते में काफ़ी महरूमी देती है क्योंकि मेरा भाई नहीं था, मेरे बाबू थे हमारे पास में, तो जैसे होता है ना कि मेरी मैंने बात हुई थी सरकारी से, तो मैंने ये रिक्वेस्ट अल्लाह से की हुई है कि मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शख्सियत वाला हाथ क़यामत वाले दिन देखना है अपने साथ है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ रिश्ते में और उतनी महरूमी देखी है मैंने, तो जैसे कहने के जो मर्दों का
तो शोहर के साथ फिर आपका मामला कैसा रहा, शोहर के साथ मामला कैसा रहा?
जी मैंने वही है ना कि अगर कहते हैं ना कि मैंने उनको सर पे जो रखी रखा है मेरी पहले ये कहती है क्योंकि मुझे मैं हद से ज़्यादा सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो फिर मैंने यही सोचा कि जिस तरह ये मे बी समथिंग डिफरेंट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड को दी।
अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बेहतरीन तरीके से करे। तो यहाँ आज हमारे पास मतलब बाज़ाब्ता तौर पे ये तजल्लियात-ए-नबुव्वत बुक पूरी हुई है। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।